તારીખ 26/3/1994 શ્રી સમયસર ગાથા 17-18 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું આગ્રામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 24 મૂળ કેસેટમાં અવાજ ધીમો છે.
કાર કે 17-18 ગાથા પીટીકા ચાલ રહી હૈ. આખરી કે સ્વાધ્યાય મેં અંતિમ બાત ચલી હૈ कि जो मोक्षार्थी जीव है वो अपने अनुभव में आने वाले अनेक प्रकार के भावों में मिश्रितता होने पर भी सर्व प्रकार से भेदज्ञान करता है, उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है. सर्व प्रकार से भेद ज्ञान माने स्वपर की जुदाई जानने में, भेदने में, व्याप्त व्यापकता में और अपनी प्रत्यक्षता, प्रत्यक्ष विद्यमानता में जो चारों ओर से सर्व प्रकार से विज्ञान करता है, उसे अनुभूति स्वरूप अपने आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव होता है. ऐसे अनुभव को आत्मज्ञान कहते हैं. और जो आत्मा अनुभव में आया वैसा ही मैं हूं, ऐसी निर्विकल्प प्रतीति को आत्मश्रद्धान कहते हैं, यानी सम्यक दर्शन कहते हैं. और जिसे ऐसा आत्मश्रद्धान और आत्मज्ञान हुआ, तब समस्त अन्य भावों का भेद होने से, समस्त प्रकार के विभाव भाव जुदा हो जाने से या इसका अवरोध नहीं रहने से, उसका प्रतिबंध हट जाने से, निशंक अपने में स्थिर रह सकता है. ऐसा स्थिर होने के परिणाम को आत्मा का आचरण, स्वरूप आचरण कहने में आता है. इस तरह से सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और आत्मचारित्र की, यानी सम्यक चारित्र की सिद्धि है. यही आत्मसिद्धि है. साध्य आत्मा की इस तरह से ही सिद्धि होती है, प्राप्ति होती है. अन्य प्रकार से कभी नहीं होती है, अन्यथा नहीं होती है. अब कहते हैं कि ऐसी अनुभूति करनी चाहिए, होनी चाहिए. हम चाहते भी हैं लेकिन नहीं हो रही है, यह भी एक हकीकत है. आचार्य महाराज करुणा करके इसको और सरल बनाते हैं. कैसे सरलता से ऐसी अनुभूति हो, इस विषय एक सुंदर प्रतिपादन इस गाथा की टीका में आचार्य महाराज कर रहे हैं. परंतु जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबके अनुभव में सदा स्वयं ही आने पर भी अनादि बंध के वश परग्रहों के साथ एकत्व के निश्चय से मूड हुआ अज्ञानी जन, उसको जो ये अनुभूति है वही मैं हूं, ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता. उतना ही सिर्फ नहीं कहा कि अज्ञानी जीव को आत्मज्ञान उदित नहीं होता, मिथ्या ज्ञान उदित हो रहा है. इतना सिर्फ नहीं कहा. थोड़ी लंबी चौड़ी बात इसलिए कही कि ऐसा अज्ञानी जन भी आत्मानुभूति कर सके तो कैसे सरलता से कर सके। किस आबाल गोपाल मैंने सबको, सदा मैंने कोई काल ऐसा बाकी नहीं है, सर्व काल में मैंने अब भी स्वयं ही अपने आप कुछ करना धरने का है ही नहीं, अपने आप ही क्या हो रहा है कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ ही रहा है, आत्मा अनुभव में आ ही रहा है। इतना निम्न कह करके अनुभूति स्वरूप आत्मा अनुभव में आ रहा है ऐसा कहते हैं। अनुभूति माने क्या? ज्ञान में जो ज्ञान वेदन है वो हमेशा हमेशा सभी जीव को वर्तता ही है, वर्त रहा ही है। कोई जीव ऐसा नहीं है कि जिसको ज्ञान में अपना ज्ञान वेदन स्वयं निरंतर चल रहा नहीं हो, चल ही रहा है। और यही ज्ञान वेदन ही अनुभूति है, यही ज्ञान वेदन ही आत्मा है। जब ऐसा हो रहा है तो कठिनाई किस बात की है, फिर दुख किस बात का है? कि दुख इस बात का है कि अनादि से बिंद के वश एकत्व का निश्चय हो गया है। मैं शरीर वाला हूं, मैं राग वाला हूं, मैं अनेक प्रकार के संयोग वियोग वाला हूं, ऐसा जो निश्चय है, इस निश्चय से मूर्ता को प्राप्त हुआ है आत्मा, यानी अपनी मति है वो बिल्कुल इस अपने अनुभूति के विषय में बिल्कुल काम नहीं करती है, ऐसी मति हो गई है। सिद्धार्थ खत्म वो होता है, इसमें से यह निकलता है कि अगर परद्रव्यों के साथ एकत्व का जो निश्चय है यह निश्चय मिटाया जाए तो कुछ करना धरना नहीं है, क्योंकि अनुभूति तो हो रही है, ज्ञान में ज्ञान का वेदन तो सबों को चालू ही है। ज्ञान स्वयं का वेदन का त्याग कभी कर सकता नहीं। क्या ज्ञान का वेदन करना, अनुभूति करना वो करने का बाकी नहीं है, हो ही रहा है सबों को? ये तर्क हो सकता है कि हो रहा है तो हमें मालूम क्यों नहीं पड़ता? तो उसका तो कारण बता दिया कि परद्रव्यों के साथ एकत्व का निश्चय है अनादि से, इसलिए मालूम नहीं पड़ता। मालूम नहीं पड़ता इसलिए नहीं है, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि खुद आचार्य महाराज कह रहे हैं तो एक बार तो श्री गुरु के वचन को बुद्धिगम्य नहीं हो तो भी स्वीकार लेना चाहिए। कल बात चली थी रात को कि गुरु के वचन को कैसे स्वीकार करें, कि बुद्धि सम्मति न देती हो तो भी, बुद्धि सम्मत न होती हो तो भी श्री गुरु कहते हैं यह सही है, समझने में कहीं मेरी गलती हो रही है। यहां से विचार शुरू करना चाहिए, यहां से खोज चालू करना चाहिए अपनी गलती निकालने के विषय में। तो जब आचार्य महाराज ये बात कह रहे हैं कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा तू
तुझे इसमें शंका करने की भी जरूरत नहीं है और निश्चल होकर के निर्भय हो जाओ तुम। ये निर्भयता जन्म मरण का भय को छुड़ाएगी। जब जन्म मरण का भय छूटेगा तो फिर दूसरे भय तो इसके नीचे वाला है, इसके ऊपर वाला तो कोई भय हुए है ही नहीं जगत में। मरण से कोई ज्यादा भय किसी का नहीं होता। बहुत हिम्मत आ जाए अपने काम करने की, ऐसी एक बात यहां कर दी है, वरना एक जाने अनजाने में पूर्वग्रह बना रहता है जीव को कि हम तो रहे अज्ञानी, हम तो रहे संसारी, हम तो रहे गृहस्थी, हम तो रहे फलाने फलाने। ऐसा पूर्वग्रह में क्या करें, हम ज्ञानी नहीं, हम विद्वान नहीं, हम कुछ जानते नहीं, हमारा जो है इतना परिणाम खराब हो रहे हैं, बहुत पाप के परिणाम हो रहे हैं, गृहस्थी में ऐसे हैं वैसे हैं, क्या करें, रागी हैं, द्वेषी हैं हम, बहुत मोही हैं हम, तो कहते कि ये सब होने पर भी एक अंदर में ज्ञान की अनुभूति की ज्योत जलती हुई हमेशा हमेशा प्रकट ही है। सिर्फ उसका सत्कार कर दो, उसका आदर कर दो, वरना ये कहेंगे ज्ञानी के पास तो अनुभूति है, हमारे पास अनुभूति कहाँ है। ज्ञानी तीर जाते हैं क्योंकि तो अनुभूति संपन्न है। आचार्य महाराज कहते हैं कि तू भी अनुभूति संपन्न हो, प्रमुदित हो जाओ, आनंदित हो जाओ, तुम भी अनुभूति संपन्न हो। अनुभूति की लक्ष्मी तुम्हारे में भी प्रगट है, अप्रगट नहीं है, यहां अनुभव में आ रहा है, प्रगट है। दीनता हीनता को तू निकाल दे, ऐसा पूर्वग्रह रखने लायक नहीं है। जो बेगन ज्ञान में ज्ञान का हो रहा है सिर्फ उसको नजर में लेना है, नजर में नहीं लेकर के परद्रव्य और परभाव को ही अपने रूप निश्चय कर लिया है, ये पूर्वग्रह छूट जाना चाहिए। यह प्रश्न यहां अवश्य हो सकता है कि छूट जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, लेकिन कर होए कैसे, ये प्रश्न अवश्य हो सकता है। तो आगे इसी का ही विस्तार किया है आचार्य महाराज ने, यही कारण से अनेक गाथाओं लिखने का प्रयोजन है कि देख अपने में ज्ञान परिणमन कर रहा है वेदन रूप, और राजा भी परिणमन कर रहा है आकुलता रूप दुख रूप। अब अपना अस्तित्व कहां है उसको देख ले, खोज ले, अस्तित्व मैंने क्या, अपनापन का अनुभव कहां हो रहा है, अपनी विद्यमानता अपनी मौजूदगी राग में अनुभूत होती है या ज्ञान में अनुभव में आती है, यह गाथा है कर्ता कर्माधिकार की 79-71 गाथा है। वो गाथा साफ में है, उसमें वो बात है कि जैसे क्रोधादि क्रिया मालूम पड़ती है, परिणमित हुई मालूम पड़ती है, वैसे ज्ञान क्रिया परिणमित हुई मालूम नहीं पड़ती है। जैसे ज्ञान क्रिया परिणमन करती हुई मालूम पड़ रही है, वैसे क्रोधादि क्रिया मालूम नहीं पड़ रही है। मतलब क्या,
कि एक में अपनापन होने से दूसरे में नहीं होता। अनादि से क्रोधादि रागादि विभाव में अपनापन अनुभव हो रहा है, तो ज्ञान क्रिया की विद्यमानता होने पर भी उसमें अपनापन अनुभव में नहीं आ रहा है, और यह गलती है। क्यों गलती है? कि क्रोधादि रागादि क्रिया मिट जाती है, छूट जाती है, हमारी विद्यमानता यों की यों रह जाती है, इसलिए यह गलती है। ध्यान से देखे तो गलती छूट जाती है। गलती का छूटना, उसका ज्ञान करना उतना ही कार्य है कि गलती कैसे हो रही है। बस गलती का ज्ञान होते ही ये भूल छूट जाती है। बात रही अनुभव दृष्टि से देखने की। मात्र विचार से ये काम नहीं होता। अपने शरीर में वो बात ठोक ठोक कर हमने कही है कि मात्र विचार से काम नहीं होता। अनुभव क्या हो रहा है, हमें हमारा कार्य अनुभव पद्धति से सिद्ध करना पड़ेगा। क्यों? कि हमारा मोक्ष मार्ग भी अनुभव प्रधान है। मोक्ष मार्ग कैसा है? स्वानुभव प्रधान है। जैन धर्म ही अनुभूति प्रधान है। एक जापान का इतिहासकार आया था, गुरुदेव बताते थे, बहुत खोजी आदमी था, खोजी जापानीज था, तो उन्होंने बहुत से हिंदुस्तान के संप्रदायों का अभ्यास किया, उसमें जैन धर्म का उसने यही संशोधन करके निष्कर्ष निकाला कि जैन धर्म है वो स्वानुभूति प्रधान धर्म है, ऐसा निकाला। देखो फॉरेनर था फिर भी सूक्ष्म तो अपना आपका होता है, शक्ति है, ऐसा निकाला उसने। तो अनुभव क्या हो रहा है? जब तक रागादि और देहादि में मैंपना का, अपनत्व का अनुभव हो रहा है, हमें हमारी भूल को देख करके मिटानी पड़ेगी कि ये हमारी भूल है। यहां तो श्री गुरु ने इतनी बात सब स्पष्ट कर दी है कि कहीं भी दुविधा न हो, मार्ग में आने में एकदम सरलता और सुविधा हो, ये तो भूल है। जब तीन चीज विद्यमान है, ज्ञान भी विद्यमान है, राग भी विद्यमान है, और शरीर आदि संयोग भी विद्यमान है, हम ज्ञान को छोड़ करके रागादि और देहादि में क्यों अपनत्व कर रहे हैं? इन परिभ्रमण का मूल कारण है। पर में अपनत्व करना उतना ही परिभ्रमण का मूल कारण है, और उस अपनत्व को छोड़ करके ज्ञान में अपनत्व करना यही परिभ्रमण छूटने का कारण है। जिसको ऐसा परिभ्रमण से छूटने का अंतर से भाव हुआ हो, भावना हुई हो, उसे इसका ज्ञान जिसको प्राप्त हुआ हो, इसके चरण में जाकर के दासानुदास बने रहना चाहिए। ये वचनामृत है श्रीमद् राजचंद्र जी का। उन्होंने एक जगह लिखा है कि ये बड़े परिभ्रमण का कारण है, ये परिभ्रमण का अभाव का कारण है। अब जिसको परिभ्रमण से छूटना हो, उसे ऐसा ज्ञान जिसको प्राप्त हुआ हो, इसके चरण सानिध्य को दासानुदास हो रह करके प्राप्त कर लेना चाहिए। जब ये विद्या मिलती है, विद्या अध्यात्म विद्या है, अनुभव की विद्या है, तो यहां तो साफ बात है कि तीन पद विद्यमान होने पर भी हम एक ज्ञान पद को छोड़ करके रागादि और देहादि में अपने आप को अनुभव करने हैं कि मैं राग वाला हूं, मैं देह वाला हूं इत्यादि। अब श्री गुरु कहते हैं कि ऐसा क्यों करते हो तुम, यही तेरा परिभ्रमण का और सर्व प्रकार के दुख का कारण है। जब ज्ञान विद्यमान है, मौजूद है, इस मौजूदा ज्ञान में अपने अस्तित्व को देखने का उद्देश्य धारण करके तू क्यों नहीं देखता है? तो हम कह ही रहे हैं कि भगवान आत्मा वहां है, तो तुझे तो उसके ज्ञान में करवट बदलने के अलावा क्या करने की बात है?
अपना तो इधर हो रहा है, वो उधर करना है,
और उसको दूर की तो चीज नहीं, कहीं लंबे चौड़े अंतर को तो काटना नहीं है। हमारे लिए तो वही है, हम ही तो है कि जब ज्ञान विद्यमान है, मौजूद है, तो अपना अस्तित्व, अपनापन, मैंपना ऐसा मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता है? नहीं मालूम पड़े वहां तक तो खोज, तेरा स्वर्ग वहां ही है। ये अंधेरे में चीज नहीं खो गई है, प्रकाश में खो गई है। अंधेरे में अगर चीज खोई होती तो नहीं मिलती, तकलीफ होती, लेकिन यहां तो उतनी भी दुविधा नहीं है, एकदम सुविधा है कि चीज प्रकाश में पड़ी है और नजर में आ रही है। कितना सरल मार्ग कर दिया है कि देख, मैं रूप अनुभव तो तू कर ही रहा है, मेरा पना का अनुभव तो तुझे हो रहा है, गलत अनुभव यहां है। ये गलत अनुभव को समझने से छूट जाएगा, लेकिन अनुभव को समझना पड़ेगा। और श्री ज्ञान में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा का वेदन संवेदन चालू है, संवेदन चालू है, स्वयंपना करना बाकी है। स्वयंपना आ जाएगा तो ये संवेदन स्व संवेदन हो जाएगा, उतनी बात है। इससे कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, ना कोई दूसरी शर्त नहीं है, सिर्फ मोक्षार्थी बना होने की बात है। बसंत जी, सिर्फ उतनी तो बात है, एक दफे सारे संसार को अभिप्राय में तिलांजलि दे करके यही एक कार्य मुझे जीवन में आयु पूर्ण हुए उसके पहले कर लेना है, जैसे कैसे भी, एट एनी कॉस्ट, कोई भी कीमत लग जाए, मामूली चीज नहीं है, इसका मूल्य नहीं हो सके उतनी चीज है। जन्म मरण मिटता है, एक मरण को छुड़ाने के कोई दवाई अगर हमें दे दें कि एक टेबलेट खा लो मृत्यु आएगी नहीं, तो हम परिवार की ओर देखेंगे नहीं कि कितना कर्ज करना और परिवार पर बोझ आ जाएगा। हाँ, सिर सलामत तो पगड़िया बहुत कमा लेंगे, कर्ज चुका देंगे, अगर जिंदे रहे तो, जिंदे ही नहीं रहे तो अनंत अनंत मरण छुड़ाने के लिए ये आचार्य महाराज की एक टैबलेट ही समझो। तो इसके लिए सिर्फ हमारे तो अभिप्राय को ही तैयार करना है। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम परिवार को छोड़ करके जंगल में चले जाओ, अभी लग्न हो जाओ, अभी दीक्षा ले लो, अभी फलाना त्याग कर लो, इतना दान दे दो, वो कर दो, वो कर दो, इतना विधान करा लो, फलाना करा लो, कुछ नहीं। सिर्फ अभिप्राय में तैयारी होनी चाहिए कि हमें ये करना ही है, किसी भी कीमत पे करना ही है। उतनी तैयारी वाले को कुंदकुंड महाराज ने मोख कामेण ऐसा शब्द से मोक्षार्थी कहा है, और ये मोक्षार्थी ऐसा कर सकता है। वो मोक्षार्थी नहीं होता वह अनादि से संसारार्थी होने से उनकी सभी धार्मिक प्रक्रिया धार्मिक क्रियाएं संसार में सफल हुई है, संसार के लिए सफल हुई है, संसार ही बढ़ाया है। अन्य क्रिया करके तो संसार बढ़ता है, लेकिन धर्म क्रिया जिसको बोली जाती है ऐसी कहलाने वाली धर्म क्रिया वास्तव में नहीं है, इस संसारार्थ हुई है, संसार फला है इससे, क्योंकि मोक्षार्थी नहीं बना। तो मोक्षार्थी हो गए तो करवट बदलने जैसी बात है, मोक्षार्थी नहीं हुए तो कुछ भी कर करके चूर चूर हो जाए कुछ होने वाला नहीं है। 142 कलश में कहते हैं कि क्या हुआ, महाव्रत का तप रूपी भार को वहन किया तो क्या हुआ, ज्ञानम ज्ञान गुणम बिना प्राप्तम क्षमन्ते नहीं। 142 के अंतिम चरण में क्या कहते हैं आचार्य, कि इस ज्ञान पद की प्राप्ति तो ज्ञान गुण बिना कभी होता नहीं है। ज्ञान गुण माने क्या, ज्ञान गुण माने ज्ञान में ज्ञानानुभव, यही ज्ञान गुण है, यही ज्ञान स्वभाव है। ऐसा अर्थ गठन किया पंडित श्री राजमल जी ने कलष्टिका में, ज्ञान गुण का ऐसा अर्थ किया कि अपना अनुभव करना ही ज्ञान का स्वभाव है, क्योंकि पर का अनुभव ज्ञान कर नहीं सकता, अनुभव करने का इसमें गुण है और अपना अनुभव करना भी इतना ही इसमें गुण है, पर का वेदन नहीं कर सकता, चाहे तो भी अध्यास हो जाता है कर नहीं सकता। राग को पर है ऐसा जानता है, वेदन करता है ऐसा नहीं हो सकता। अगर वेदन करे तो ज्ञान और राग जुदा नहीं रह सकता, किंतु अज्ञानी को भी राग और ज्ञान कभी तीन काल में एक हुआ नहीं, जब एक हुआ ही नहीं, भूल से एक पना का अध्यास और अनुभव हो रहा है तो अध्यासित अनुभव है, झूठा अनुभव है, तो देख करके भूल को निकाल देनी चाहिए, अनुभव को समझ करके इस भूल को निकाल देनी चाहिए। और वो ऐसे निकलती है कि मैं पना कहां भाषित हो रहा है, लग रहा है कहां, राग में और देह में लग रहा है, भूल है, ऐसा श्री गुरु कहते हैं हमें मान्य कर लेना चाहिए। ज्ञान में मैंपना है इसलिए अनुभव में आ सकता है, ज्ञान में अपना अस्तित्व है इसलिए अपनापन इसमें अनुभव में आ सकता है, और ऐसा अनुभव करना यही सम्यकत्व है। क्या, यही सम्यक्त्व है, सम्यक्त्व कोई दूसरी चीज नहीं है, सम्यक्पना को सम्यक्त्व कहते हैं। ज्ञान में सम्यक्त्व सम्यक्पना हो, श्रद्धा में सम्यक्पना हो, आचरण में सम्यक्पना हो, बस इतने उसको ही, इतने इसको ही समझना है, परखना है, समझना है माने परखना है को कैसे होता है। तो कहते हैं कि जिसको परब्रह्म के साथ एकत्व का निश्चय हो गया है, यह निश्चय नहीं टूटता है, यह निश्चय टूटता है तो भाव भाषण से टूटता है, सिर्फ पढ़ने से सुनने से विचार करने से चिंतन करने से मनन करने से नहीं टूटता है, भाव भाषण में आने से टूटता है तो अनुभूति होती है, नहीं टूटता है वहां तक अनुभूति है, वही में ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता है, और आत्मज्ञान उदित नहीं होता तो आत्मज्ञान के अभाव में आत्मश्रद्धान विदित नहीं होता, सीधा आत्मश्रद्धान किसी को नहीं होता है, आत्मज्ञान पूर्वक ही आत्मश्रद्धान होता है, सम्यक श्रद्धान होता है, सम्यक दर्शन होता है। क्यों? इसका एक न्याय देते हैं आचार्य महाराज कि अज्ञात का श्रद्धान गधे के सिंह के श्रद्धान समान है, इसलिए जो चीज को जानी नहीं उस चीज को मानी है, ये बात तो गधे के सिंह के श्रद्धान करना बराबर है। जब गधा का सिंह है ही नहीं और हमको श्रद्धा है कि गधा था, बड़े बड़े सिंह वाला था, क्या बड़ा छोटा का सवाल नहीं, यहां है ही नहीं, यहां बड़ा छोटा का सवाल गधा कहां से होता है। बिना ज्ञान श्रद्धा में और बिना ज्ञान श्रद्धान बिना ध्यान मैंने लीनता भी नहीं। आत्मा में निशंक स्थिर होने की असमर्थता के कारण ज्ञान क्यों नहीं होता, इसका भी लॉजिक दिया है कि ज्ञान श्रद्धान उदित नहीं होता तब समस्त अन्य भावों के भेद से आत्मा में निशंक स्थिर होने की असमर्थता के कारण आत्मा का आचरण उदित नहीं होता। कि लीनता है, स्थिरता है, वो नहीं उदित हो सकता। ऐसा न होने से आत्मा को नहीं साध सकता, ज्ञान श्रद्धान और आचरण तीनों ही नहीं है तो आत्मसाधन होता नहीं, होता है तो तीनों होता है, नहीं होता है तो एक भी नहीं होता है। इस प्रकार साध्य आत्मा की सिद्धि की अन्यथा अनुपपत्ति है। इस प्रकार से साध्य जो हमारे आत्मा, उसकी सिद्धि नाम प्राप्ति, उसकी अनुपपत्ति मैंने अन्यथा असिद्धि है, अप्राप्ति है। ऐसा करके करके आचार्य महाराज यहां इस टीका को समाप्त करते हैं। पंडित जयचंद्र जी है, बहुत सरल शब्दों में इसका भावार्थ लिखते हैं यहां। साध्य आत्मा की सिद्धि दर्शन ज्ञान चारित्र से ही है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से ही साध्य आत्मा की सिद्धि माने प्राप्ति है, अन्य प्रकार से नहीं। अस्ति नास्ति से अनेकांत किया है, कहीं भी व्यथा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। परिश्रम करना ही है, पुरुषार्थ करना ही है, तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र का ही करना चाहिए। क्योंकि पहले तो आत्मा को जाने कि यह जो जानने वाला अनुभव में आता है सो मैं हूं, जानने वाला जानने में आता है ऐसा नहीं लिखा पंडित जी ने भी, क्या लिखा थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है। ये जानने वाला तो ख्याल में आता है लेकिन अनुभव में आना चाहिए, क्या जानने वाला अनुभव में आता है वो अपने रूप अनुभव में आता है, विचार में थर्ड पर्सन आता है कि आत्मा जानने वाला है, मैं जानने वाला हूं, मैं जानने वाला हूं, वो अपनत्व उसमें नहीं आता है, अनुभव अपने रूप आता है और है भी अनुभूत अनुभव स्वरूप। इसके बाद उसकी प्रतीति रूप श्रद्धान होती है, क्योंकि जाने बिना किसका श्रद्धान करेगा, ये बात पंडित जी ने भी उठाई है। तत्पश्चात समस्त अन्य भावों से भेद करके अपने में स्थिर हो, इस प्रकार सिद्धि होती है। किंतु यदि जाने ही नहीं तो श्रद्धान भी नहीं हो सकता, और ऐसी स्थिति में स्थिरता कहाँ करेगा, इस स्थिति में कहीं भी स्थिरता हो ही नहीं सकती। दूसरे दूसरे प्रयोग से परिणमन में चंचलता कम हो सकती है, लेकिन वो टेम्पररी रहती है, हमेशा हमेशा टिक सकती नहीं है। इसलिए यह निश्चय है कि अन्य प्रकार से सिद्धि नहीं होती, ऐसा निश्चित होता है कि अन्य प्रकार से कुछ साधन और सिद्धि का प्रकार हो ही नहीं सकता। इस तरह से इस गाथा का स्वाध्याय यहाँ समाप्त होता है।